हमारे बीच में भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली, सदा भगवान की नजरों में रहने वाले, अपने हर कर्मों से भगवान को प्रत्यक्ष करने वाली, ऐसे इस विश्वविद्यालय की मोस्ट सीनियर, अनेक आत्माओं को बाबा के घर का स्टैंप लगाने वाली, जो बाबा ने आपको टाइटल दिया है हर की पौड़ी, यहां सब आएंगे और ऐसी बाबा की अमूल्य रत्न जो आपके कर्मुक कमल द्वारा ज्ञान प्राप्त करके जाते हैं स्टैंप लगाकर, ऐसी बाबा की अमूल्य रत्न आदरणीय राजयोगिनी शुलू दीदी, हम सभी एक हाथ की ताली से स्वागत करेंगे। शिलू दीदी, इस डायमंड हॉल की सभा में आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है। आप वरिष्ठ राजयोगा प्रशिक्षिका, एकेडमी फॉर बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर, निर्देशिका राजयोग शिविर माउंट आबू, टीवी चैनलों में प्रवक्ता, महासम्मेलन वक्ता एवं आप अनुवाद भी करते हैं। आप शिक्षा प्रभाग की वाइस चेयरपर्सन है, 5 महाद्वीपों में और 70 जितने अधिक देशों में परिभ्रमणा करके आपने बाबा का मैसेज पहुंचाया है। अनेक आत्माओं की दुआएं आपके पास प्राप्त है। नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को भी आप घोषित करती हैं। आपकी स्वभाव में सरलता है, वाणी में मिठास है, ऐसी बाबा की विशेष रतन हम सभी को अभी ज्ञान रतन से झोली भरेंगी। आपका विषय है जीवन की नैया प्रभु के हवाले, इस टॉपिक पर प्रकाश डालेंगी राजयोगिनी आदरणीय शिलू दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर विषय हमें दिया गया है, जीवन की नैया कर दे प्रभु हवाले, और गीत भी इसी पर सुना, जैसे वो चाहे वैसे इसे संभाले, जीवन की नैया कर दे प्रभु हवाले, जैसे वो चाहे वैसे इसे संभाले। ये सभी, ये गीत सभी का है ना, जो समझते हैं सचमुच ये हमारा गीत है, जीवन की नैया प्रभु हवाले कर दी है, जैसे वो चलाए वैसे ही हाँ हम तैयार हैं वो संभालेंगे, तो हाथ उठाएं भाई। अच्छा, सभी हाथ उठा रहे हैं, बस फिर तो सब तैयार हैं, हाँ कोई और तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी तैयारी करनी है या नहीं करनी है, थोड़ी बहुत तो करनी है ना, क्योंकि आखिरी घड़ी भी कुछ न कुछ रह जाता है, तो इसीलिए पूरी तैयारी हो तब तो वो नाव चलेगी। नाविक तैयार हैं, नाव भी तैयार हैं, अब उसमें बैठने वाले कितने तैयार हैं वो अपने आप से पूछें। हर जीवन भी एक नैया है और प्रभु उसका खिवैया है। तो बहुत सुंदर ये विषय है, क्योंकि जैसे ही हम ये सोचते हैं कि बाबा ये जीवन अभी आपके हवाले है, आप इसे जैसे चलाएं वैसे हम तैयार हैं, जो खिलाएं जो पिलाएं जहां बैठे बिठाएं जो हमें दे सब तैयार हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। तो आप सब ने हाथ उठाया कि सब तैयार है। अभी बाबा सबको बुलावे इतने हद तक तैयार है, जो बाबा अभी बुलावे आप तैयार हो गए, जो समझते अब जब कभी भी बाबा बुलावे हम तैयार है, हाथ उठाए वो। अच्छा सारे तैयार हैं। अच्छा बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सचमुच, क्योंकि समय को भी देख रहे हैं, परिस्थितियों को भी देख रहे हैं, संसार की हालत भी देख रहे हैं, महसूस भी हो रहा है कि ये अंतिम घड़ियां चल रही है और जीवन का भी कोई भरोसा तो है नहीं। बैठे बैठे अचानक हार्ट अटैक आ जाता है, बैठे बैठे अचानक कुछ भी हो जाता है। अब जो कुंभ मेले में स्नान करने हो गए होंगे, सोचा होगा मौनी अमावस्या का हम पहला पहला स्नान हम करें, कितने भाग दौड़ करके पहुँचे होंगे सवेरे 1-2 बजे मानो, और अचानक इतनी भीड़ आ गई, करोड़ों लोगों की भीड़, और कुछ लोग उसके अंदर कुचल कर मर गए, वहाँ ख़त्म भी हो गए। उनको पता थोड़ी होगा कि हम वहाँ जा रहे हैं अपनी मौत लाएंगे, कुछ पता नहीं था। तो भी कैसे अनहोनी हो गई, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सदा तैयार रहें, ये बाबा हम बच्चों को चेतावनी दे रहे हैं। परंतु तैयारी क्या करनी है? ऐसे तो नहीं कि तैयारी माना कपड़ा वपड़ा लेना है, बिस्तरा पेटी बांधना है, या कुछ पैसा वैसा साथ में लेना है, ये सब तैयारी है। क्योंकि विदेश जाते हैं तो पासपोर्ट तैयार होना चाहिए, वीज़ा ठीक होनी चाहिए, फॉरेन मनी भी होना चाहिए, ये सब वहाँ जो काम आएगी चीज़ें वो होनी चाहिए। तो हम वहाँ कहेंगे भाई हम तैयार हैं। अब ये तो हमारी यात्रा ऐसी है जहाँ ये सब चीज़ें तो चाहिए ही नहीं, लेकिन क्या चाहिए? तैयारी तब पूरी हमारी मानी जाएगी जब कौन सी ऐसी चीज़ें हमारे पास हो जो हम कहें कि हाँ हम तैयार हैं। तो आप लोगों ने अष्ट शक्तियों में वो चित्र देखा होगा ना, जिसमें बताया है एक होल्डॉल है और पेटी है और एक बिस्तरा है, एक पेटी है और एक हाथ की बैग है। माना हमारा सब सामान पैक्ड है, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, जब भी कहा जाएगा हम चल पड़ेंगे। तो 3 चीज़ें उसमें दिखाई है, उसमें सब पैक्ड है। तो पहले ज़माने में तो होल्डॉल ले जाते थे, एक बड़ा बिस्तरा, इतना बड़ा मोटा बिस्तरा होता था, उसके अंदर सब कुछ डालते थे और वो यात्रा के दौरान नहीं खोलते थे, जब वो मंजिल तक पहुंचते थे तभी खोलते थे, क्योंकि उसमें वो चीज़ें डालते थे जो रास्ते में ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन जब जहाँ जाना होता वहाँ पहुँचने पर ज़रूरत होती थी, तो वो सब एक बिस्तरे के अंदर डाल देते थे और दूसरा एक पेटी लेते थे, जो पेटी हाथ में रखते थे और एक पर्स, एक हैंडबैग। तो बाबा भी हमें कहते हैं ये 3 चीज़ें अपने साथ तैयार होनी चाहिए। तो हैंडबैग में क्या होना चाहिए, फिर वो पेटी में क्या होना चाहिए, सूटकेस होता है ना हाथ की सूटकेस, और फिर वो होल्डॉल पूरा बिस्तरा बिस्तर बंद। और आजकल तो हवाई जहाज़ों में ट्रैवल करते हैं तो पहले तो बड़ा सूटकेस ले आते हैं और उसमें वो चीज़ें डालेंगे जो रास्ते में नहीं चाहिए, पर जब पहुँचेंगे अपने अपने गंतव्य पर तब वो खोलेंगे, तब मिल जाएगी वो, और वो चेक इन में डाल देते हैं। चेक इन में डाल दिया और जब वापस हमको चाहिए, हम पहुंच गए अपने गंतव्य पर, तो ले लेते हैं। और पर हाथ में एक छोटा सूटकेस होता है और हैंडबैग होती है। तो ये तीन चीजें हैं, दो चीजें तो अपने पास रखते हैं और तीसरी जो बड़ी बड़ा होल्डऑल है, बड़ा सूटकेस है, वो भेज देते हैं और रास्ते में वो हमको नहीं मिलता है। तो तीन चीजें बाबा हमें कहते हैं, इसको पैक करके रखो। दुनिया की कोई चीजें साथ नहीं चलेगी, न धन चलेगा, न दौलत चलेगी, न कोई वैभव चलेंगे, न ही ये शरीर चलेगा, न मित्र संबंधी चलेंगे। और जाना भी अकेला है ना, गीत भी गाते हैं, जाना तुझे अकेला कौन सा, न हाथी होगा न घोड़े होंगे, तुम्हें पैदल ही जाना होगा। तो इसीलिए पैदल जाना है तो कितना हल्का होना पड़ेगा, ज़्यादा भारी सामान तो उठा नहीं सकते हैं, और कोई हाथी नहीं, कोई घोड़ा नहीं, माना न कोई व्यक्ति साथ में, न कोई वस्तु साथ में, न कोई वैभव साथ में, न इस संसार की कोई भी चीज़ हम साथ में ले जाएंगे तो क्या ले जाएंगे। वैसे तो कहते हैं कि अकेले आए हैं अकेले जाना है, न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाना है ना, ऐसे कहते हैं। नंगे आए हैं नंगे जाना है, बच्चा पैदा होता है कोई कपड़े नहीं होते, बाद में उसको पहनाते हैं, फिर पॉकेट भी बनाते हैं, और जब कोई मरता है तो कफन का जो कपड़ा होता है उसमें भी कोई पॉकेट नहीं होते कि कोई कुछ उसमें डाले और वो साथ में ले जाए, वो भी नहीं है। तो इसलिए स्थूल वस्तुएं तो है ही नहीं, तो फिर ऐसी कौन सी चीजें आत्मा के साथ जाएगी, क्योंकि शरीर भी नहीं जाएगा, तो आत्मा के साथ क्या जाएगी चीजें, उनको हमें साथ में रखना है। तो पर्स में क्या रखना है, फिर वो छोटी पेटी में क्या रखना है, और वो जो बिस्तर बंद है, जो बड़ी पेटी है उसमें क्या रखना है, जो भेज देना है वो रास्ते में नहीं खोल सकते हैं, ना वो हम आपके साथ होगा। तो पहली चीज है, तीन चीजें हम बाबा हमेशा कहते हैं, आत्मा के अंदर तीन शक्तियां हैं। कौन सी है वो तीन शक्तियां? मन, बुद्धि और संस्कार। ये तीन शक्तियां हैं आत्मा की, इसलिए आत्मा को चेतन कहते हैं। चेतन माना सोचने के लिए मन है, निर्णय करने के लिए बुद्धि है, और कर्म करने के लिए वो संस्कार है, क्योंकि संस्कार अनुसार ही फिर कर्म भी होते हैं और कर्म ही फिर संस्कार बन जाते हैं। तो इसीलिए हमारी हैंडबैग जो है वो मन है। तो मन में क्या डालेंगे, वैसे देखा जाता है मन जो हैंडबैग होती है, छोटी सी थैली होती है या हैंड हाथ में पकड़ने की बैग होती है, उसमें अधिकतर जो काम की चीजें होती है ना वही रखते हैं। दवाई रखेंगे क्योंकि रास्ते में दवाई की जरूरत पड़ती है, या कुछ ऐसा कीमती कोई चीज है तो वो उसमें रखेंगे, अपने साथ रखेंगे। तो मन है हमारा हैंडबैग। अब उस हैंडबैग में क्या रखेंगे जो हर वक्त हमारे काम आएगी? तो मन रूपी हैंडबैग में क्या रखना है, क्योंकि मन का काम क्या है? संकल्प करना, सोचना। तो अच्छे विचार, जिसको बाबा कहते ज्ञान, क्योंकि ज्ञान जब बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि में को दिया है, तो ये मन में विचार सागर मंथन करने के लिए है। आज भी बाबा ने कहा तुमको कितना ज्ञान बाबा देते हैं, जो दुनिया में किसके पास भी नहीं है। आज की बाबा की मुरली में था, किसी को पता नहीं आत्मा क्या चीज है, सच पूछो तो। बड़े बड़े विद्वान, पंडित, आचार्य, धुरंधर, शास्त्र पढ़े लिखे, लेकिन सचमुच आत्मा क्या चीज है उनको पता नहीं है। भले आत्मा आत्मा कहते हैं, लेकिन देह अभिमान में ही रहते हैं हर वक्त। वो देह का भान छूट जाए और सचमुच आत्मा अभिमानी बन जाए, क्योंकि वो तो मन को और ही दमन करते हैं, कुछ भी न सोचे, क्योंकि वो समझते हैं मन तो दुश्मन है। तो इसीलिए मन ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसीलिए सोच को ही बंद कर देते हैं, बिल्कुल सोचना ही नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सोचे ही नहीं, मन का तो काम ही सोचना है, मन का काम ही सोचना है। मन एक घोड़ा है तो घोड़े का तो काम चलना दौड़ना है। आप घोड़े को केवल बिठा दो, कुछ काम नहीं दो, न चलाओ न फिराओ, खाली घास खिलाते रहो, वो घोड़ा तो बेचैन हो जाएगा, उसको तो दौड़ना है, उसका वही काम है। और बाबा कहते हैं मन तो तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है जो उसको तुम मारोगे, तो मन को मारो नहीं, मारना नहीं है, मन दुश्मन नहीं है, पर मन को जीतना है। उस दिन भी बाबा ने कहा मन जीते जगत जीत का मतलब ये नहीं है मन को मारना, पर मन को जीतना माना मन को अपना मित्र बनाना। आप जो चाहो वही मन में सोचो, जो आप नहीं चाहो वो मन में आए ही नहीं संकल्प, एक सेकंड में उसको फुल स्टॉप लगा दो, उसको खत्म करो, ब्रेक लगा दो, वो सोच चलना ही नहीं चाहिए। तो मन में जो बाबा कहते ज्ञान हो, जिसको जिसका दुनिया में किसको पता नहीं है, वो भगवान ने हमको ज्ञान दिया है। बाकी जो कुछ भी है वो सब भक्ति है, वो भक्ति है। तो जब हमें पता चला कि बाकी सब भक्ति है और ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है, तो बाबा की जो मुरली है उस मुरली में जो ज्ञान की बातें आती है, शिक्षाएं हमें मिलती है, जो धारणा हमें बताई जाती है बाबा द्वारा, वो वास्तव में सच्चा ज्ञान है, जिसमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, कर्मों का ज्ञान, समय का ज्ञान, घर का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, कितना ज्ञान बाबा ने हमें दिया है। हर मुरली में कोई न कोई ऐसी नई पॉइंट हमें मिल जाती है बाबा की, जिसका हम मनन चिंतन कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं उस मन रूपी पर्स में बस केवल वो ही हो और कुछ न हो। हमने देखा है कई हमारी माताएं बुजुर्ग माताएं हैं, बुजुर्ग है, उनको बाबा के ज्ञान के सिवाय और किसी में रुचि नहीं है। सारा दिन देखो मुरली ले रहे, मुरली लेके पढ़ रही है, मुरली, बाकी कुछ आता नहीं है, बस बाबा की मुरली आती है और कुछ नहीं आता है। और देखो कितने सुंदर सुंदर जवाब देती है जो भी प्रश्न उनसे पूछते हैं। हमारे मधुबन में भी एक माता है, डॉक्टर कुमुद है, इतनी बुजुर्ग है, इतनी बुजुर्ग है, बेचारी चल भी नहीं पाती है, काफी बुजुर्ग है, लेकिन जब देखो कोई भी मुरली की पॉइंट इतना फट से जवाब देती है, बात मत पूछो, आज की बाबा की मुरली की ये पॉइंट पर बाबा ने क्या समझा, फट बता देगी, इतनी बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट्स है। तो बुद्धि बहुत उनकी शार्प है, शरीर भले कैसा भी है, अब वो साथ जाएगा आत्मा के, जहां भी वो जाएगी वो साथ जाएगा, और जो भी उनसे मिलने जाती है उसको बाबा की बातें सुनाती है, ज्ञान की बातें सुनाती है, सबको बहुत अच्छा लगता है उनसे मिल करके, क्योंकि वो इतना मुस्कुराती रहती, हंसती रहती है और ज्ञान की बातें सुनाती है। और मैं समझती हूँ 80 साल 90 साल की होगी तो इतनी है, तो बाबा से भी इतना प्यार, जब देखो बस बाबा, बाबा के सिवा और कुछ नहीं है उसकी बुद्धि में। तो मन रूपी पर्स में क्या रखो, नैया प्रभु के हवाले है पर साथ में कुछ तो जाएगा, तो ज्ञान। फिर बाबा कहते ये ज्ञान भी सतयुग में नहीं आएगा, लेकिन इस ज्ञान का स्वरूप बन जाएंगे। जो बाबा ने ज्ञान दिया है, जो धारणा बताई है, शिक्षाएं दी है, वो इस जीवन में हम लाते हैं तो उसका स्वरूप बन करके हम जाते हैं। तो वो है मन रूपी पर्स साथ में, जो सब कुछ वो ज्ञान भरपूर है। हम जो चाहे वो सोचे, मनन करे, चिंतन करे, मंथन करे, इतना खजाना बाबा ने हमें दिया है ज्ञान का। तो मन रूपी पर्स में थैली में ज्ञान के रत्न रखो हर वक्त, मुख से और कुछ निकलना नहीं चाहिए, ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, ज्ञान रत्नों के सिवाय और कुछ निकलना नहीं चाहिए। ऐसे फालतू फालतू बातें, ये बातें वो बातें, उसकी बात उसकी बात। बाबा कहते हैं ये पर चिंतन, पर निंदा, पर ग्लानी, पर मत, ये पर सब काट दो, तब चल सकेंगे घर, हल्के होकर के चलना। नहीं तो इसकी बात उसकी बात उसकी बात दिमाग में रखेंगे तो कितने भारी हो जाएंगे, तो कैसे उड़ेंगे, कैसे चलेंगे बाबा के पास, कैसे हम तैयार कहलाएंगे अपने आप को। अभी बाबा कहेंगे फिर फलाना याद आ जाएगा, बाबा का फिर वो बात याद आ गई, वो बात याद आ गई। इसीलिए और कुछ भी नहीं याद आए तब कहेंगे हम तैयार है, प्रभु हवाले कर दिया है हमने बाबा अपने अपना जीवन। तो मन में रखो ज्ञान के रत्न, और जो आए उनको वो ही बांटो, और कुछ नहीं बांटने की जरूरत है। आज भी बाबा ने कहा ज्ञान रत्न बांटो, लोग स्थूल धन है तो भी वो स्थूल धन जमा करके क्या करेंगे, वो भी सेवा में लगाओ। पर हाँ ऐसे वैसे को नहीं दान करना है, क्योंकि दान भी पात्र को करना है, कुपात्र को दान नहीं करना है, वो पता नहीं किस कार्य में लगा देगा। तो इसीलिए वो धन भी अगर दान करते हैं, क्योंकि वही साथ चलेगा, जो मैंने हाथों से दान किया है वही हमारा भाग्य बनेगा, वही हमारा पुण्य कर्म कहलाएगा। लेकिन वो दान पुण्य तब बनेगा जब पात्र को दान देंगे। ज्ञान भी पात्र को देना है, जो समझना ही नहीं चाहता उसको थोड़ी हम समझा सकेंगे। इसीलिए बाबा कहते तीक तीक भी नहीं करनी है, बहुत ज्यादा भी किसके पीछे नहीं पड़ना होता कि ज्ञान को समझना ही है, हाँ ये करना ही है, नहीं समझना छोड़ देना। जैसे बाबा बिच्छू का मिसाल देते हैं, हाँ बिच्छू का मिसाल देते हैं ना, उसका काम ही है डंक मारना, बिच्छू का यही काम होता है। वो दिखाते हैं ना, एक साधु था, वो नदी किनारे तपस्या कर रहा था, तो एक बिच्छू ने उसको काटा, तो वो उसको ऐसे हटा करके फिर डाला नदी में, फिर आया फिर काटा, तो फिर बिच्छू को हटा दिया। हाँ उसको भाई चलो ये काट रहा है, तो किसी ने कहा ये क्या तुम बार बार कर रहे हो, तो उसने कहा वो बिच्छू का काम है काटना डंक मारना, पर मेरा काम है उसको बचाना, तो मैं बचाऊंगा ना तो वापस मैं उसको डालूंगा पानी में, तो बच जाएगा नहीं तो मर सकता है। तो मेरा काम है बचाना, उनका काम है डंक मारना, तो वो करेगा, मैं अपना काम करूँ अपना काम करेगा, ऐसे ही है ना। तो इसीलिए मन का काम सोचना है, सोच को बंद नहीं करना, पर क्या सोचना है वो बाबा हमको हर मुरली में खजाना देते हैं। फिर बुद्धि है छोटी अटैची, बुद्धि है छोटी अटैची, तो छोटी अटैची जो साथ में रखते हैं तो उसमें क्या रखना है, गुण रखने हैं, गुण। वो गुण जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है, जिस शक्ति की आवश्यकता है, गुण और शक्ति, ये उस समय जैसी परिस्थिति जैसा वातावरण उस अनुसार उस गुण को यूज करना है, उस शक्ति को यूज करना है। जैसे बाबा कहते हैं जब सामना करने की शक्ति चाहिए तब सहन नहीं करना है, परिस्थिति जब आती है तो सामना करना है, डरना नहीं है। आप जब व्यक्ति आता है तो सहन करो। आज बाबा ने कहा कोई आपको कोई किसकी दृष्टि बुरी है, कुदृष्टि है, आप चले जाओ वहां से, आप चले जाओ वहां से, उसके सामने मत खड़े हो जाओ, सामना नहीं करो, उसको गाली नहीं देना शुरू करो, तुम मेरे को ऐसे क्यों देखते हो, क्यों देखते हो। कहेगा देखूंगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले, मैं जो चाहूं सो करूं, बस आप वहां से चले जाओ, उसके सामने मत खड़े रहो। वाइब्रेशन तो आते ना कि इनकी दृष्टि अच्छी नहीं है, और वो अगर जो कुछ कर रहा है वो उसका कर्म, पर मैं वहां से चला जाऊं। कोई गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, मैं गुस्सा ना करूं पर मैं वहां से चला जाऊं, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, उस व्यक्ति से सामने से हट जाओ तो हमको उन जैसा व्यवहार नहीं करना पड़ेगा। तो उसमें हमको वो जो परिस्थिति है उसका सामना करना है, किसकी मृत्यु आती है तो हमको सामना करना है उस परिस्थिति का, भले कितना भी वो मेरा मददगार था या जो भी था, इतना निकट का संबंधी था, लेकिन वो परिस्थिति है, हम उसको कुछ रोक नहीं सकते हैं तो फिर वो परिस्थिति का सामना करना है। पर जहाँ व्यक्ति आता है, वो गाली दे रहा है, वो बुरा बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो उसको सहन करके उसको सामने जवाब नहीं देना, पर वहां से चले जाना है। या नहीं जा सकते हैं तो एक कान से सुना, दूसरे कान से हट कर निकाल दिया। दूसरी ताली नहीं बजनी चाहिए जो आवाज हो, नहीं तो वो तेल का रूप बन जाता है, तो आग और भड़क जाएगी। तो इसीलिए वो किस समय कौन सा गुण चाहिए, किस कार्य के लिए, किस परिस्थिति के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, वो परख शक्ति और निर्णय शक्ति बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम कई बार मिसाल देते, आजकल का जमाना तो सही नहीं है ना, आजकल क्या क्या मनुष्य करते हैं, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कितनी गंदी दृष्टि, कितनी गंदी वृत्ति है, कैसी कैसी मानो बातें हो रही है संसार में, जो हम सोच भी नहीं सकते वो भी हो रहा है संसार में, कलयुग अंत है। तो ऐसे संसार में रहते भी आज बाबा ने कहा कमल फूल समान रहना है। कमल फूल समान रहने के लिए छोड़ नहीं देना है। आज बाबा ने यहां तक भी कहा कि कमल का कितना बड़ा परिवार है, कितना बड़ा परिवार है। कमल के पत्ते हैं वो तो सब कीचड़ में, कमल की डंडी वो भी कीचड़ में है, कमल की जड़ें, कमल काकड़ी वो भी सब जड़ें, सब कुछ कीचड़ में है। कमल के से कितने फल निकलते हैं ना, कमल का वो सारे फल भी है, तो उसका पूरा परिवार है, पूरा गृहस्थी है कमल, लेकिन खुद कमल कैसे रहता है कीचड़ से ऊपर, उसका परिवार सारा कीचड़ में है, कीचड़ से दूर भी नहीं है, कीचड़ में सारा सब कुछ है उसका, पर वो खुद कीचड़ से अलिप्त है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये मिसाल देते हैं कमल के फूल का। तो बुद्धि में क्या रहे, बुद्धि रूपी जो छोटी सूटकेस आपके हाथ में है उसमें गुण और शक्तियां भरे, और वो गुण और शक्ति समय पर काम आए। जो बाबा कहते ऐसे नहीं वो परिस्थिति चली जाए फिर याद आ रहे मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने ऐसे क्यों किया। बाबा ने कल भी कहा कि एक बार अगर भूल हुई फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए वो भूल। तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे कि अगर एक बार भूल हुई उसे सीख लिया फिर दोबारा वो भूल ना करे, क्योंकि अनुभवी बन गए।